उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ गया था, जिसके कारण उसका हृदय कठोर तथा दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष जंगली पशुओं का वध कर दिया। तात्पर्य, जब किसी मनुष्य को अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है। आसुरी होने पर लोग निरीह पशुओं के प्रति दयावान नहीं रह जाते, फलतः वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इसे सूना या हिंसा कहते हैं। कलयुग में रजो तथा तमोगुण में वृद्धि होने से प्रायः सभी लोग आसुरी हैं, अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, जिसके लिए वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। इस कली काल में दया की वृत्ति प्रायः शून्य हो गई है, अतः मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष तथा युद्ध चलते रहते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं, उसी प्रकार से महायुद्धों में उनका भी वध होगा। यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही स्पष्ट दिखता है। पश्चिम देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए प्रति पांचवें या दसवें वर्ष महायुद्ध होता है, जिसमें असंख्य लोग पशुओं से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं। कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। कसाई घरों में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशुवध का ही यह दुष्परिणाम है। अभिमानी आसुरी लोग न तो प्रकृति के नियमों से न ही ईश्वरीय नियमों से परिचित होते हैं, इसीलिए वे परवाह किए बिना बेरोक टोक पशुओं का वध करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशुवध सर्वथा वर्जित है। अतः किसी को तब तक इसके प्रामाणिक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वे चार विधि विधानों का व्रत नहीं ले लेता। ये हैं पशुवध न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना, अवैध स्त्री संसर्ग न करना तथा जुआ न खेलना। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस कली काल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबसे आशीर्वाद चाहेंगे, विशेषतः परम पूज्य राम गोविंद महाराज जो यहाँ उपस्थित हैं, तो आशा करते हैं कि आशीर्वाद उनका है ताकि कुछ बोल सकें। पुरंजन का आख्यान यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कैसे इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि वो खेलने के लिए आखेट के लिए जाते हैं शिकार के लिए, और फिर कैसे वापस आते हैं और फिर से अपनी पत्नी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और फिर से भोगों में पड़ जाते हैं। पुरंजन की कथा ये जीव की कथा है, जैसे आगे नारद मुनि इसको अगले अध्यायों में समझाएंगे कि किस प्रकार जीव या पुरंजन, जैसे यहाँ वर्णन किया गया पिछले श्लोकों में कि वो बहुत अहंकारी हो गया और पशुओं का वध करने के लिए, आखेट करने के लिए वन में चला गया। इसी तरह जीव जब अहंकार में आता है तो जैसे पुरंजन ने अपनी पत्नी अर्थात बुद्धि को त्याग दिया, तो जीव अपनी कृष्ण भावना भावित चेतना को त्याग कर फिर वो इस जगत में अनेकों अनेकों कार्य करता है अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए, भोग प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए, और उसके आधार पर कई अपराध करता है, कई पाप करता है, और जिसके फलस्वरूप उसका बंधन बढ़ता जाता है। यही पुरंजन की कथा है कि किस प्रकार पुरंजन अपनी शुद्ध चेतना को त्याग कर, किस प्रकार जीव अपनी शुद्ध चेतना को त्याग कर विस्मरण के कारण, अविद्या के कारण कैसे इस भौतिक जगत में केवल भोग पर आधारित चेतना को लेकर फिर वो इस जगत में आनंद लेने का प्रयास करता है, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीव बड़ा सुखी हो जाता है, और उसका कारण क्या है, उसने अपनी मूल चेतना को त्याग दिया। जीव की तो मूल चेतना कृष्ण भावना भावित रहना है। जिस दिन हम इस चेतना को त्याग देते हैं, जिस दिन भोग प्रवृत्ति के पीछे भागते हैं, जिस दिन हमारी चेतना भगवान से दूर होकर फिर बाकी भोगों में पड़ती है, 84 लाख योनियों का बंधन है। हम भूल जाते हैं कि हर अवस्था में कृष्ण ही है जो हमारा संरक्षण कर रहे हैं, ये अहंकार है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में दो महत्वपूर्ण चीजों को प्रकट कर रहे हैं। एक वो जो भौतिक चीजों के कारण ऐश्वर्य के कारण अहंकार प्रकट होता है जीव के हृदय में, और दूसरा उस अहंकार से जो हिंसा वो करता है, परिणामों को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि ये जो हिंसा, ये भोग प्रवृत्ति, ये जो कार्य मैं कर रहा हूं अपने आनंद के लिए, ये सोच कर कि ये मुझे आनंद देंगे, आनंद देते नहीं हैं। हमें छाया कभी आनंद नहीं दे सकती, प्रतिबिंब कभी आनंद नहीं दे सकता। आनंद चीजों से होता है, वस्तुओं से होता है, सत्य से होता है। अगर हम खाना चाहते हैं, अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, प्यास मिटाना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए, भोजन चाहिए, फलों का प्रतिबिंब, भोजन का प्रतिबिंब, जल का प्रतिबिंब संतुष्टि प्रदान नहीं करता। इसी तरह इस जगत में ये जो आनंद का प्रतिबिंब है ये संतुष्टि प्रदान नहीं करता। हम ये भूल जाते हैं कि हर अवस्था में कृष्ण ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। व्यक्ति भक्ति में आता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भूल जाता है। बड़े दुख की बात है, आश्चर्य की बात है। बाहरी जगत में कष्ट होता है हमें, हमारे भोगों में बाधा आती है, हम भक्ति में चले आते हैं। भक्ति में आकर वातावरण बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, हमारी वो जो कष्ट थे वो चले जाते हैं। और फिर जीव क्या करता, फिर पुरंजन ने क्या किया, फिर से भोग। फिर हम भक्ति के नाम पर भोग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी जगत में भोग में बाधा पड़ी, अब यहां बाधाएं दूर हो गई, लोग अच्छे हैं, भक्त अच्छे हैं, स्थिति अच्छी है, इसलिए पुनः भोग की प्रवृत्ति, फिर से हम भोग करना चाहते हैं। जीव अपने मूल चेतना को भूल जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था, 18 दिन युद्ध चला, युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन ने कृष्ण से कहा आप उतरिए रथ से पहले। कृष्ण ने कहा नहीं, पहले तुम उतरो। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। वैसे कृष्ण ने जब ये सारथी का कार्य लिया तो बड़ा प्रेम दर्शाया अर्जुन के प्रति। जब भगवान सारथी बने, अर्जुन तैयार होकर आए, युद्ध का दिन था, अब युद्ध के लिए सेनाएं आगे बढ़ने वाली हैं। ये वैसे वो दिन था जब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा का दिवस था जहां सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, पांडवों की सेना को बढ़ना था। श्री कृष्ण ने रथ को तैयार किया, अर्जुन के सारथी हैं। सारथी होने का शब्द अर्जुन, सारथी होने का अर्थ भूल गया अर्जुन। सारथी अर्थात हमारे इस रथ को चलाने वाले। पुरंजन का रथ क्या है? ये शरीर, और इसके सारथी हैं श्री कृष्ण। प्रेम से सारथी बनते हैं। अर्जुन जब आए, भगवान ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लिया और अर्जुन को कहा कि इसके ऊपर पांव रखकर चढ़ जाओ रथ पर। सारथी का कर्तव्य होता है रथी की सेवा करना, भगवान दिखला रहे हैं। ये प्रेम है भगवान का। और जब 18 दिवस के बाद अर्जुन ने कहा कृष्ण से आप उतरिए, अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा पहले तुम उतरो अर्जुन, और अर्जुन उतर गए, भगवान के आदेश का पालन किया। और जैसे ही कृष्ण उतरे रथ चूर चूर हो गया, कई अस्त्र। अर्जुन भले ही बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन उसके दुश्मन, उसके शत्रु उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इसीलिए तो प्रश्न हुआ कि कैसे, जो अर्जुन तो बहुत छोटी सी मछली था, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कैसे अर्जुन जीत गया उनसे? तो अर्जुन युद्ध कर रहा था, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र गिर रहे थे, भगवान ने दिखलाया कि अर्जुन मेरी शक्ति के कारण रथ बना हुआ था, मैंने उन अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव को निरस्त कर दिया, नहीं तो तुम तो कब के मर चुके होते, ये रथ तो कब का टूट चुका होता। भगवान रक्षा करते हैं। इसी तरह ये हमारा शरीर, ये रथ है जिसमें हम रथी के रूप में बैठे हैं। अगर ये भूल जाएं कि कृष्ण रक्षण करते हैं, और अगर कृष्ण अपनी रक्षा को हटा दें, तो जान लीजिए एक दिन भी हम भगवान के नाम का जप नहीं कर पाएंगे। माया के अस्त्र बहुत हैं, चारों तरफ से आक्रमण है हमारे ऊपर। ये तो कृष्ण की शक्ति है कि आज भी हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। संभव नहीं है हम सबके लिए अगर कृष्ण का रक्षण ना हो। अर्जुन क्या युद्ध करता था भीष्म से, द्रोणाचार्य से, जिस द्रोणाचार्य ने उसे सिखाया अर्जुन कैसे पकड़ना है इस धनुष को, उनसे कैसे युद्ध करता, क्या शक्ति थी अर्जुन की। श्री कृष्ण का संरक्षण, चूर चूर हो गया रथ जब कृष्ण उतरे। इसी तरह हमारे इस रथ पर बहुत प्रभाव होते हैं, माया के अस्त्र रोज चल रहे हैं, अस्त्र आज भी हैं। ये मत सोचिए कि हम सब परे हो गए आत्मा के माया के, ऐसा नहीं है। अस्त्र आज भी हैं, शस्त्र आज भी चल रहे हैं। ये तो कृष्ण का संरक्षण है कि हम भक्ति में बने हुए हैं। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। पहला विषय जो प्रभुपाद यहां लहर कह रहे हैं, अपने पद का गर्व नहीं होना चाहिए हमें। इस शरीर का, ये भक्ति का, भक्त का, किसी पद का, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, कोई गर्व नहीं होना चाहिए। इस रथ पे हम बने हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो जान लीजिए हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम पूरी तरह कृष्ण भावनामृत से बाहर जाने की तैयारी कर चुके हैं। हम तो पूरे तैयार हैं अहंकार के द्वारा, लेकिन कृष्ण का रक्षण है। कृष्ण ने रोक रखा है, इस रथ को बनाए हुए हैं कि ये समझता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो जानता हूं। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कोई भौतिक भोग मांगने मेरे पास आता है, मूर्ख है, विष मांग रहा है, लेकिन वो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, इसलिए मैं विष प्रदान नहीं करता। तो इसे जानना चाहिए कि जब जो कुछ हमारे जीवन में है वो भगवान के द्वारा संरक्षण प्रदान है, और भगवान जब चाहे निकाल लेंगे इस शक्ति को। हमें गर्व होता है अपने बोलने की शक्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी भक्ति पर, भक्ति में किए गए बड़े बड़े कार्यों पर। लेकिन जिस दिन भगवान ने शक्ति निकाल ली, जिस दिन भगवान ने सोच लिया बस जिस कार्य के लिए इसको शक्ति दी थी समाप्त, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भील बालकों से हार गए। भील बालकों के पास कौन सा धनुष था? अर्जुन ने गांडीव धारण किया हुआ था, चुनौती दी अर्जुन को बालकों ने। अर्जुन हंसे, अर्जुन ने कहा जाओ खेलो, क्या युद्ध करेंगे अर्जुन से। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और इन भील बालकों ने पेड़ की टहनियों को तोड़कर धनुष बाण बनाया हुआ है, और वो लेकर खड़े हैं अर्जुन के सामने। जैसे एक बालक एक छोटी सी एक खिलौने को लेकर एक आतंकवादी हो जिसके हाथ में AK-47 हो उसके सामने खड़े हैं। ऑफकोर्स अर्जुन आतंकवादी नहीं है, आप कहेंगे ये कैसे आपने तुलना कर दी। क्या क्या उसकी स्थिति है, क्या भील बालकों की स्थिति थी अर्जुन के सामने। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन, और कुछ समय पहले उसने युद्ध में सबको हरा दिया है। अर्जुन हार गए, बचा नहीं पाए श्री कृष्ण की रानियों को जिनको लेकर चले थे कि मैं रक्षा करूंगा। अब श्री कृष्ण नहीं है, भूल गए। श्री कृष्ण को रक्षा करने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अर्जुन हार गए, मुंह लटकाकर वापस आए। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ अर्जुन। मैं वही अर्जुन हूं, ये वही गांडीव है, मेरे वही अस्त्र शस्त्र है मेरे पास, लेकिन वो शक्ति चली गई। इसीलिए जान लीजिए अहंकार नहीं, गर्व नहीं। जिस दिन श्री कृष्ण चाहें इस शक्ति को निकाल लेंगे। परशुराम जी 21 बार पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियों से रहित कर दिया, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी के सामने आए भगवान ने उस शक्ति को निकाल लिया। बस परशुराम तुम्हारी काम पूरा हुआ, उन्होंने चला दिया तीर, चढ़ा लिया, बताओ क्या करूं, इससे तुम्हारी सारी शक्ति का नाश करूं या क्या करूं। हाथ जोड़ दिए परशुराम जी ने, लेकिन भगवान ने वरदान दिया, मांगो क्या मांगना है। और परशुराम जी ने मांगा, यदि मैं अनुग्रह हो राम तवास्ति मधुसूदन त्वद्भक्त संगस्त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु में। परशुराम जी ने कहा, आपने मेरी सारी शक्ति ले ली, मुझे कोई चिंता नहीं है, अब उस शक्ति का मुझे कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ति दीजिए जो कोई मुझसे छीन नहीं सके, और वो है आपके भक्तों का संग और आपके चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति, बस ये मुझे प्रदान कीजिए। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, अहंकार नहीं कीजिए, ये शक्तियाँ हमें मिली हुई हैं, किसी की शक्ति है ये, पराई शक्ति पर कैसा अहंकार। प्रभुपाद ईशोपनिषद में लिखते हैं कि ये शरीर एक पराया वस्त्र है जो हमें मिला हुआ है, हमारा भी नहीं है, तो ऐसी पराई शक्तियों पर कैसा अहंकार। मान लीजिए आपको कोई कुछ चीज देता है, ये थोड़े समय के लिए रख लो इसको, और आपको उसका अहंकार हो जाए, जैसे एक बैंक में कैशियर है, दिन में हजारों लाखों रुपए उसके हाथ में आता है और जाता है, लेकिन क्या कैशियर को अहंकार होना चाहिए, किस चीज का अहंकार। हमें उस कैशियर की तरह होना चाहिए। ये शक्तियां, ये कला, ये बुद्धि भगवान ने प्रदान की है, और जिस दिन गौरव हो जाता है इसका, अहंकार हो जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, विद्यर गौरवे भ्रमि देश देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तो मारे हरी। जिस दिन ये गौरव हो गया, जिस दिन ये गर्व हो गया, विद्या रे गौरवे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, जैसे प्रभुपाद यह लिख रहे, जब मनुष्य को अपने पद का गर्व हो जाता है, बहुत पढ़ाई कर ली, विद्या रे गौरवे भ्रमि देशे देशे, बहुत सारे देशों में गया, और किसके लिए, धन उपार्जन करी, धन कमाने के लिए, स्वजन पालन कोरी एक मने, मैंने ये सोच लिया कि स्वजनों का पालन, परिवार चलाना, इस शरीर को चलाना, बस यही जीवन का उद्देश्य है, भूली नु तुम्हारे हरि। तो जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है वो भूल जाता है कृष्ण को, अपने शरीर के लिए कार्यों को करना, अपने शरीर के लिए भगवान से कुछ मांगना, ये भगवान पर अविश्वास दिखलाना है। शरीर तो वैसे भी पालन होने वाला है, जो हमारे कर्म में है वो तो आएगा ही, चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी, भगवान पर अविश्वास नहीं दिखलाना चाहिए, भगवान से मांग कर कि मेरे शरीर को बनाए रखिए, मेरा पालन कीजिए, वो तो वैसे भी होने वाला है। भगवान से प्रेम मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए, और जिस दिन हमें अहंकार होता है भक्ति में रहकर भी, जैसे यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसको अहंकार होता है वो हिंसा करता है, प्रभुपाद यहां पशुओं की हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, और एक पशु यहां इस शरीर में बैठा है। भगवान कपिल कहते हैं, जंतु देहो पपत्रये, ये जंतु बैठा है यहां इस शरीर में, एक पशु बैठा है। सबसे बड़ी हिंसा इस पशु के प्रति हिंसा है। एक हिंसा है जो हम स्थूल शरीर को मारकर करते हैं, दूसरी हिंसा है जो हम किसी का अपमान करके करते हैं, मन के स्तर की हिंसा, लेकिन उससे बड़ी हिंसा है आत्मा की हिंसा, जो हम आत्मा को भगवान से दूर ले जाकर करते हैं। इसीलिए जान लीजिए, जिस दिन अहंकार हुआ आप ठीक से पूजन भी नहीं कर पाएंगे, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अहंकार से की गई पूजा को स्वीकार नहीं करते, वो रजोगुणी पूजा है। दुर्योधन ने की, दुर्योधन ने प्रश्न किया भगवान से। जिस समय भगवान पहुंचे शांति दूत बनकर, दुर्योधन ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी भगवान के लिए, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, बहुत व्यवस्था की थी दुर्योधन ने। भगवान ने देखा तक नहीं उसकी ओर और उस पर क्रोधित हो गया दुर्योधन। आप सोचिए, दुर्योधन राजा है, उसने व्यवस्था की है और श्री कृष्ण देख भी नहीं रहे हैं। दुर्योधन ने प्रश्न कर लिया कि ऐसा क्यों, मैंने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं मेरी व्यवस्था को, आप बताइए, आपको कारण देना होगा। कृष्ण से कारण पूछा दुर्योधन ने, और श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि तुम मेरे भक्तों से द्वेष करते हो, अहंकारी हो, पांडवों से द्वेष करते हो, और जो व्यक्ति मेरे भक्तों से द्वेष करता है उसकी सेवा में स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार और द्वेष से की गई सेवा भगवान स्वीकारते नहीं। और भक्ति में है क्या हमारे पास सेवा, और वही भगवान स्वीकारे नहीं। साधना संबंध सारे खराब हो जाते हैं अहंकार से। हम भक्तों से अच्छा संबंध नहीं रख पाते, गर्व हो जाता है। ब्रह्मचारियों को अगर गर्व हो जाए कि वो बहुत बड़े त्यागी हैं और ये जितने गृहस्थ हैं ये सारे पतित जीवात्माएं हैं, है ना। कभी कभी हमारे अंदर ये अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने सब कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, सारा परिवार त्याग दिया, भगवान को समर्पण किया, और ये लोग अभी तक पड़े हुए हैं उसी में। संबंध बिगड़ जाते, अहंकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को बड़ी नम्र भाव में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए कि गृहस्थ ये मेरे लिए माता पिता के समान हैं। जैसे एक माता पिता अपने पुत्र का ख्याल रखते हैं, ऐसे ब्रह्मचारियों का ख्याल गृहस्थों को रखना चाहिए। और गृहस्थों को भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि गृहस्थों को अहंकार हो जाए मंदिर तो हम चलाते हैं, डोनेशन कौन देता है, ये हम चलाते हैं। नहीं, जैसे ब्रह्मचारियों का भाव होना चाहिए कि मेरे माता पिता के समान हैं, वैसा आदर उनको देना, उसी तरह गृहस्थों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहने वाले, संन्यास आश्रम में रहने वाले, उन सब का ख्याल रखना उनका कर्तव्य है। ये इस कर्तव्य कुछ उनको पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचारियों का, संन्यासियों का ध्यान उन्हें कोई अहंकार से नहीं, उन्हें अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। ये प्रमाण, ये इससे अच्छे संग या अच्छे संबंध होंगे। लेकिन अहंकार है ब्रह्मचारी होने का, सन्यासी होने का, तो फिर वो अहंकार कृष्ण से दूर ले जाता है। और वृंदावन तो स्थान है जहां अहंकार होना ही नहीं चाहिए। जीव गोस्वामी तक को रूप गोस्वामी ने बाहर कर दिया वृंदावन से, कि अगर अहंकार है। वैसे जीव गोस्वामी को अहंकार नहीं था, लेकिन एक दर्शाने के लिए रूप गोस्वामी ने कि चाहे व्यक्ति किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, अहंकार ये केवल पतन का कारण है, अहंकार ये शुरुआत है। इसीलिए प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि किस तरह से हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमारे सारी सेवाओं का उद्देश्य कृष्ण का गुणगान होना चाहिए। महाभारत में राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, क्या उसका अहंकार था, क्या वो बहुत बड़ा सम्राट बनना चाहता था? युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि सारे सारे जितने राजा हैं वो मुझे समर्पण करें? नहीं। बहुत सुंदर प्रसंग है, जिस समय नारद मुनि आए महाराज युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर महाराज, बहुत बड़ा संवाद है, उन्होंने वर्णन किया अलग अलग सभाओं का, और सारा वर्णन सुनने के बाद युधिष्ठिर ने प्रश्न किया नारद मुनि से कि आपने सबका वर्णन किया लेकिन केवल एक राजा हरिश्चंद्र हैं जो इंद्र की सभा में उपस्थित हैं, बाकी सबका आपने वर्णन नहीं किया, बाकी राजा क्यों नहीं पहुंचे? और उस समय युधिष्ठिर महाराज को तीन कारण दिए नारद मुनि ने कि उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि हरिश्चंद्र जी पहुंचे क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। युधिष्ठिर, तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम राजसूय यज्ञ करो, देवता चाहते हैं तुम राजसूय यज्ञ करो। तो तीन कारणों में पहला कारण दिया, तुम्हारे पिता की इच्छा है, देवताओं की इच्छा है। दूसरा कारण, देवता चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य स्थापित हो। आज जितने भी राजा हैं जो इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं, अधिकतर अधर्मी हैं। जब तुम्हारे अधीन रहेंगे तो धर्म का राज्य स्थापित होगा, साम्राज्य स्थापित करो। लेकिन इन दोनों कारणों से महत्वपूर्ण कारण, जिससे बड़ी प्रसन्नता हुई युधिष्ठिर महाराज को हृदय में, और वो था तीसरा कारण। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि राजसूय यज्ञ से कृष्ण का गुणगान होगा, और ये उनके राजसूय करने का एक ही कारण था, श्री कृष्ण का गुणगान। जिस समय राजसूय यज्ञ किया, सारे ऋषि मुनि आए, नारद मुनि कहने लगे कि जानते हो ये सारे ऋषि मुनि क्यों आए हैं युधिष्ठिर महाराज? इतने सारे यहां पर पूरे ब्रह्मांड से उपस्थित हुए थे, तो क्या उद्देश्य है? युधिष्ठिर ने कहा, स्वाभाविक है, कृष्ण को देखने आए हैं, भगवान यहां उपस्थित हैं। नारद ने कहा, नहीं, श्री कृष्ण को नहीं, ये आपको देखने आए हैं कि कौन है वो व्यक्ति जिसकी सेवा स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने बड़ी नम्र सेवा की, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरणों को धोना, उनका स्वागत करना। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए ब्रह्मांड भर के ऋषि इत्यादि आए कि कौन है ये व्यक्ति जिसकी श्री कृष्ण सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ये कार्यों से हम लोग देखते हैं कि अगर अहंकार से रहित रहना है तो कृष्ण की प्रसन्नता हमारे सेवा का उद्देश्य होनी चाहिए, अन्यथा अहंकार सब कुछ नाश कर देगा। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि अहंकार जैसे हृदय में आता है, व्यक्ति के हृदय में भोग भावना, भोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और उपभोग करने के लिए भगवान के संग को त्याग देता है। जैसे चैतन्य लीला में काला कृष्णदास भगवान के संग में थे, लेकिन फिर भी भट्टाहारियों के द्वारा हर लिए गए, और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने वापस ले आए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया, अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि काला कृष्णदास की लीला से दो चीजें चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते थे, और क्या थी वो दो चीजें? एक, कभी भी किसी का पतन हो सकता है, और दूसरा, एक तो कभी भी पतन हो सकता है और किसी का भी हो सकता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो 20 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हुए, 25 साल हो गए, कुछ नहीं होगा, माया मुझे छू नहीं सकती। अहंकार नहीं। तो इसीलिए अहंकार को ना हृदय में उत्पन्न करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमने वर्णन किया कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति रुक जाती है, अहंकार से हमारे संबंध खराब होते हैं, सेवा खराब होती है और साधना खराब होती है। अहंकारी व्यक्ति क्या साधना करेगा, किसकी साधना करेगा, किसका नाम लेगा? नाम तो नम्रता से लिया जाता है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन जो अमानी न मान देना नहीं है, जो दूसरों को मान देने वाला नहीं है, स्वयं मान की कामना करता है, कीर्तनीय सदा हरि नहीं हो सकता उससे। तो इसलिए जान लीजिए, भक्ति में आने पर भी यही पुरंजन जो अभी अब पत्नी के साथ था, बुद्धि के साथ था, कृष्ण भावनामृत में था, त्याग कर अब अहंकार के कारण उसको त्याग कर इस भौतिक जगत में या वन में चला जा रहा। तो इस अहंकार को कैसे समाप्त करना चाहिए, विशेषतः भक्ति में? बाहरी जगत में लोग अहंकारी रहते हैं, जब तक कृष्ण के निकट नहीं आते, भक्ति में नहीं आते, क्या अहंकार। ये तो भक्ति में आकर हमें पता चलता है हम दास हैं। लेकिन देखिए माया का प्रभाव, जिस समय दीक्षा हो जाती है व्यक्ति के नाम के आगे दास लगा दिया जाता है, अतुल कृष्ण दास। लेकिन वो अतुल कृष्ण सोचता है अब मैं बहुत वरिष्ठ हो गया, दीक्षा हो गई अब मैं वरिष्ठ हो गया। दीक्षा वरिष्ठ होना नहीं है, आपके नाम के आगे दास लगाया जा रहा है। आप भूल गए थे कि आप दास हैं, गुरु आपको समझा रहे हैं दास रहो, दास बनो। लेकिन हमें वहां भी अहंकार, तो इसीलिए भक्ति में बहुत आवश्यक है हम अहंकार रहित रहें। और इस अहंकार को त्याग सकते हैं सबसे पहले हमें ज्ञान हो अपनी स्थिति का, अपने जो चीजें हमें मिली हैं, अपने भाग्य का ज्ञान नहीं है हमें। ये जो भक्ति मिली है, ये जिसको हम बड़ी सरलता से कर रहे हैं, धाम में वास कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भागवत को स्पर्श कर रहे हैं, इस चीज का ये जो मोती हीरे जवाहरात हमें मिल गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण मोती, अनमोल चीज हमें मिली है भक्ति, उसके महत्व को नहीं समझते। इसीलिए पहली चीज अहंकार से रहित होने के लिए हमें अपने अनमोल चीज भक्ति जो हमें मिली है, भक्तों का संग मिला है। शास्त्रों में कई स्थानों पर कहा गया है कि जीवन में सबसे बड़ी हानि भक्तों का संग चले जाना है। व्यक्ति को रोना चाहिए, मातम मनाना चाहिए जब भक्तों का संग चले जाए, धन चला जाए, कुछ कोई उसमें कोई दुखी नहीं होना चाहिए। पहले ऐसे कहा जाता था कि व्यक्ति का अगर धन चला जाता है तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य चला जाता है तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला गया। कलयुग में उल्टा हो गया है, चरित्र चला गया कोई चिंता नहीं, स्वास्थ्य चला गया थोड़ा कुछ चला गया, लेकिन धन चला गया हाय 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 सब कुछ चला गया। मनी इज हनी, है ना। तो हमें भक्ति में ये सोचना चाहिए कि ये सब चीजें नुकसान नहीं है, सबसे बड़ी हानि है भक्तों का संग जाना। अगर हम अपने अहंकार के कारण, अपने किसी भी कार्य के कारण भक्तों से अलग हैं तो उसको त्याग देना चाहिए। इसीलिए ये जानिए कि हमें एक अनमोल वस्तु मिली है, उसका महत्व। दूसरी चीज अहंकार से रहित होने के लिए करना चाहिए, भगवान के समक्ष जाकर प्रार्थना। राधा श्याम सुंदर के सामने जाएं, कृष्ण बलराम के सामने जाएं और उनसे प्रार्थना करें। भागवत में ब्रह्मा जी समझाते हैं, जहां ब्रह्म विमोहन लीला के बाद उन्होंने भगवान के रूपों को देखा, भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज रूपों में प्रकट किया, तो उस समय कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान की जो दृष्टि पड़ती है, तो भगवान की दृष्टि से दो चीजें होती हैं। एक, हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत होती हैं, इसीलिए भगवान के दर्शन करने चाहिए। राधा श्याम सुंदर के सामने, कृष्ण बलराम के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि प्रार्थना करना ही चाहिए भगवान के सामने। तो इसीलिए भगवान के दर्शन करें, प्रार्थना करें उनसे, और उसके द्वारा आध्यात्मिक इच्छाएं। तो भगवान दो कार्य करते हैं, एक आध्यात्मिक इच्छाओं को जागृत करते हैं और दूसरा उन्हें बनाए रखने में मदद करते हैं। कभी कभी इच्छाएं हो जाती हैं लेकिन हम उनको कर नहीं पाते, बनाए नहीं रख पाते। तो भगवान का जो दृष्टि है, भगवान के देखने मात्र से ये चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए ये दो कार्यों के लिए हमें, तो पहली चीज हमें अपने जो मूल्यवान वस्तु भक्ति हमें मिली है उसका महत्व समझें, दूसरा भगवान के दर्शन हम करें और उनसे प्रार्थनाएं करें, और तीसरा बड़े नम्र भाव में, समर्पित भाव में सेवा करें भगवान की। सेवा से अहंकार टूटता है, नहीं तो व्यक्ति के अहंकार बना रहता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, एक व्यक्ति ने कह दिया कि प्रभु जी थोड़ा इधर आइए, ये जरा उठवा दीजिए। अब आपने, मैं मिट्टी कैसे उठवाऊँ, ब्रह्मचारी हूँ, कई सालों से हूँ, सन्यासी हूँ। सेवा, सेवा से अहंकार टूटता। अगर हम सोचते हैं कृष्ण की सेवा है, कोई भी सेवा क्यों ना हो, हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें, समर्पित भाव से श्रवण करें और नम्र भाव से सेवा करें, कृष्ण की कृपा निश्चित आएगी। लेकिन ना हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, ना समर्पित भाव से श्रवण करते हैं और ना ही नम्र भाव से सेवा करते हैं। कभी कभी तो सेवा करते हुए अहंकार बढ़ जाता है कि देखो मेरे जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। तो इस भाव में हमें रहना चाहिए। तो तीसरी चीज सेवा, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी स्वतंत्रता को त्यागना। जब तक ये स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे, हम कृष्ण के समर्पण नहीं कर सकते, और जब तक समर्पण नहीं है कृष्ण को, कृपा कैसे आएगी, अहंकार बढ़ता रहेगा। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति में ना रखें जहां माया शक्तिशाली हो जाए। गजेंद्र का उदाहरण, गजेंद्र पानी में था और जो मगरमच्छ जिसने पकड़ा हुआ, वो पानी का प्राणी है, इसीलिए पानी में रहकर पानी के प्राणी से, शायद गजेंद्र की कथा से ये कहावत कही गई है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, है ना, हिंदी में कहावत है ना, शायद गजेंद्र की कथा के बाद ही प्रारंभ हुआ होगा। तो पानी में रहकर पानी से बैर नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने आप को इस स्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां माया प्रभावी हो जाए हमारे ऊपर। इसीलिए ऐसी स्थिति में, ऐसी नम्र भाव में रहना चाहिए कि जहां माया प्रभावी नहीं हो सके। क्योंकि जो नम्र होता है, जैसे रूप गोस्वामी के पास दिग्विजय पंडित आए कि लिखिए, या तो आप वाद विवाद कीजिए नहीं तो लिखिए, हार गए। रूप गोस्वामी ने सोचा भी नहीं कि मुझे इससे वाद विवाद करना चाहिए, समय बर्बाद करना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं हार गया, हाँ सिग्नेचर कर दिया। हम में से कोई हो तो क्या करेंगे, हम तो रूप गोस्वामी की तरह विद्वान भी नहीं है, लेकिन अगर कोई आकर हमें चुनौती दे कि ऐसे करो, तो हम लोग हाँ आ जाओ बैठो, देखता हूँ मैं कैसे। तो मैं, अरे मैंने भी प्रभुपाद की दो बुक्स पढ़ी हैं, है ना। तो अहंकार है ये, तो इसीलिए भक्ति में अहंकार, ऐसा अहंकार हमें कभी भी आगे बढ़ने में बाधा बनता है। तो समय बहुत कम है, इस विषय पर बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम हमारे अहंकार के कारण बोलते रहे 9 बजे के आगे, तो आप लोग हमारा अहंकार तोड़ देंगे। सार ये है इस तात्पर्य में, प्रभुपाद कहते हैं अहंकार से हिंसा आती है, और हिंसा ये हमें कृष्ण से दूर कर देती है। तो अगर हमें कृष्ण के निकट जाना है, हिंसा को बंद करना है, और हिंसा को बंद करने के लिए हृदय से अहंकार को त्यागना है, नम्र भाव में भगवान की सेवा करनी है। नम्रता क्या है? सच्ची नम्रता वो है जहां हम अपने हृदय में राधा और कृष्ण को स्थान दें। श्री कृष्ण ये माखन चुराते हैं, आपने कभी सुना श्री कृष्ण ने पत्थर चुराए? अगर आपने अपना हृदय पत्थर बना रखा है, श्री कृष्ण आएंगे नहीं चुराने के लिए। लेकिन अगर नम्रता के द्वारा आपने उसको माखन की तरह कोमल कर लिया, तो श्री कृष्ण ये बाध्य हो जाएंगे आपके हृदय में आने के लिए, और इस माखन को, क्योंकि माखन देखकर वो रुक नहीं सकते हैं, है ना। पत्थर को तो वो पत्थर तो चुराते नहीं, लेकिन माखन देखकर रुक नहीं सकते। इसलिए अपने हृदय को पत्थर नहीं मक्खन की तरह बनाइए, अहंकार नहीं नम्रता लाइए। श्री कृष्ण को बाध्य करेगी ये नम्रता आपके हृदय में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।